ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में पधारे भाइयों और बहनों को नमस्कार। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। 50 लोगों ने नमस्कार किया, 500 लोगों ने ओम शांति बोला, 1000 लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला, और सब क्या कर रहे हैं? जिन्होंने जवाब नहीं दिया पता है क्या कर रहे थे? टीवी देख। हम लोग टीवी देख रहे थे ना, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आई, कितने दिन तक देख रहे थे। परंतु आप इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो अभी टीवी देखना बंद। बहुत अच्छे अच्छे आपके वक्ता आए हैं, मैंने अच्छी तैयारी भी की है, परंतु मैं क्या बोलूंगा उसका आधार आपके ऊपर है। मेरी बात समझ में आए तो कान हिलाओ, तो मैं भी समझूंगा कि सो नहीं गए। कोई हंसने की बात हो तो जोर से हंसो। हंसना आता है? आता है हंसना? हंसना आता है? हाँ, सिद्ध करके बताओ। देखो नहीं आता है ना, 50-60 लोगों को ही आता है। बच्चे दिन में 80 बार हंसते, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हंसना भूल जाते। हंसने के लिए कोई कारण चाहिए ना, है ना? छोटी बात को बड़ी बना के हंसो, बिगर कारण के हंसेंगे तो मेरे क्लिनिक में भेज देंगे आप। आपको बहुत सारे कारण मिलने वाले, जरूर हंसना। ताली बजाना तो आता है ना, वो भी भूल गए। ताली बजाने के भी बहुत सारे कारण हैं। एक कारण है, भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा तो कहा था कि सारे जीवन में 5 लाख बार ताली बजाना। अगर ये कोटा हम पूरा नहीं करेंगे तो अगले जन्म में कंपल्सरी ताली बजानी पड़ेगी। समझ गए ना? हाँ, ध्यान से सुनो। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे ना तो आपको जब इसका अर्थ समझ में आएगा तब हंसी आएगी, और फिर अपने आप पे भी हंसी आएगी। कैसा बुद्धू हूं समझता भी नहीं। हंसना, ताली बजाना, ये तो स्कूल की पढ़ाई है, कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तव में यूनिवर्सिटी का एजुकेशन है इन बातों को फील करना। मैं आपको सरल पॉइंट बताने वाला हूं, उसको फील करेंगे तब परिवर्तन आएगा। इसलिए जरूर फील भी करना। आंख में आंसू भी आ जाए तो बहुत अच्छा है, डर लगे तो डरो। ठीक है, शुरू करें? 2-4 लोग ही बोलते, और तो कहते हम जबरदस्ती आए। तो हमारी हालत ऐसी है आज वर्तमान समय, बहुत सारी चैलेंजेस है, बहुत सारी समस्याएं हैं। बच्चों को बड़ा करना सबसे बड़ी चैलेंज है ना, ऑफिस में भी चैलेंजेस है। तो ये सारी चैलेंजेस को हम कैसे मीट करें ना, उसके विषय में हमको समझना है। देखो हमारी हालत ऐसी, अपने आप को देखना आप कहां पर हो। ये जो चैलेंजेस है, कई लोग कहते कि भी आवश्यक है, भाई चैलेंजेस आवश्यक है परंतु तनाव आवश्यक नहीं। ये जो चैलेंज चुनौतियां है वह तनाव पैदा करती है, और लोग ये समझते हैं कि भी ये तनाव जरूरी है, ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है। परंतु यह नेचुरल भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा भी तनाव शरीर में, कहते 75,000 करोड़ कोशिकाएं हैं ना, उन सब पर बुरा प्रभाव डालता है। और दो महत्वपूर्ण कारण बताता हूं कि ये जो चैलेंजेस है उनको मीट क्यों करना चाहिए। चुनौतियां तनाव का रूप न ले ले। एक तो जब जब भी ये चुनौतियां तनाव का रूप लेती है तो आपके दिमाग के कुछ सेल्स से वह डैमेज हो जाते हैं। शरीर में कोई बीमारी हो तो आप कहेंगे हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बड़े ऑफिसर हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे। परंतु जब दिमाग अगर डैमेज हो गया तो कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि जब जब भी चुनौती तनाव का रूप ले लेती है तब जो शरीर में डीएनए है, रंग सूत्र जिसे कहते हैं, वह रंग सूत्र में भी हानि पहुंचती है, उसमें भी खराबी आती है। और यह जो डीएनए है उसमें खराबी आएगी तो आपको तो बीमारी होगी होगी, परंतु आने वाली पीढ़ी में भी यह बीमारी फैलेगी। शायद और एक महत्वपूर्ण कारण है क्यों हम सबको, जो मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा कि कैसे चुनौतियों को हम जीवन में उसका सदुपयोग कर लें, उससे हमें फायदा हो जाए, उसे एकदम ध्यान से सुन। हाँ, सब ध्यान से सुनेंगे, थोड़े ही लोग बोल रहे हैं। हाँ, और सब नहीं, देखो हाथ को ऐसे करो, मैं आपको पूछूंगा सभी ध्यान से सुनेंगे तो आपको बोलना यस, यस तो यस, नो तो नो। हाँ कि हाँ, सभी ध्यान से सुनेंगे, 25% ही बोल रहे हैं ना, 100% को बोलना चाहिए ना, सारे शांतिवन में तो आवाज जाना चाहिए या नहीं। देखो जब तक 100% नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है? अच्छा ओके, हाँ सभी ध्यान से सुनेंगे, अच्छा लगा ना, 50% ने बोला, बहनों की ओर से आवाज आया ही नहीं। अच्छा फिर भी अच्छा लगा, तो ध्यान से सुनना। और यह नॉर्मल क्यों नहीं? देखो एक बात अच्छे से समझ लीजिए, परिस्थितियां तनाव पैदा नहीं करती। अधिकतर लोग यह समझते हैं कि भी समस्याओं के कारण या चुनौतियों के कारण तनाव हो गया, परंतु चुनौतियां तनाव पैदा नहीं करती, परिस्थितियों में जान नहीं होती है। हम जो हमारा अप्रोच है उस परिस्थिति के मध्य आप क्या करते हैं उसके कारण तनाव होता है। सारे विश्व में जहां जहां भी मैं ये बात बताता हूं तुरंत लोग पूछते हैं कि डॉक्टर क्या गरीबी तनाव नहीं है? हाँ, जो लोग गरीब है कितनी समस्याएं होती है। वास्तव में गरीबी भी तनाव नहीं है। बंबई में गरीब व्यक्ति था, उसके 3 बेटे थे, गरीबी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भिन्न होती थी। सबसे बड़ा बेटा था वो तो गालियां देता था कि जन्म क्यों दिया अगर अच्छे से पाल नहीं सकते थे तो वो शराबी बन गया। जो सबसे छोटा था वो सोचता था कि मेरे पास पहनने के अच्छे कपड़े भी नहीं है तो वह भी पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन जो बीच वाला था रात दिन पढ़ता था, जब और बच्चे खेलते थे तब भी वह पढ़ता था, जब और बच्चे पिकनिक पे जाते थे तब भी वह पढ़ता था, आखिरी वह सर्जन बना। आज न्यूयॉर्क में उसकी बड़ी हॉस्पिटल है, एक बार उसे ओरेशन अवार्ड मिल रहा था, है ना, 3,000 डॉक्टर्स थे, मैं भी वहां था, तब उसे अपने जीवन के बारे में बोलने का मौका था। तो उसने कहा कि मैं अच्छा सर्जन क्यों बना, क्योंकि मेरे मां बाप गरीब थे। अगर मां बाप पैसे वाले होते तो शायद मुझे भी खेल कूद में इंटरेस्ट हो जाता। लोगों की आंखों में आंसू थे जब उसने कहा कि कई बार घर में दो दो दिन खाना नहीं होता था तो भी मैं पढ़ता था, यह सोचता था कि पढ़ूंगा तो यह समस्या का समाधान कर सकता। मेरा बड़ा भाई शराब पी के आता था, हंगामा मचाता था, तो भी मैं पढ़ता था, यह सोचता था कि पढ़ाई करूंगा तो इसका इलाज करा सकता। तो ऐसे आपके जीवन में कौन सी चुनौतियां आती है वह महत्वपूर्ण नहीं है, उस चुनौतियों के मध्य में आप क्या करते हैं वह महत्वपूर्ण है। और मैं आपको वह बताना चाहता हूं कि जब चुनौतियां आए तो सचमुच हमें क्या करना चाहिए। आज हम सब बॉस बन गए, तो बॉस का मतलब क्या है पता है, स्क्रीन पे देखो, बॉस का मतलब है बर्न आउट स्ट्रेस सिंड्रोम। अगर मोमबत्ती को दोनों छोरों से जलाया जाए तो कैसी हालत होगी, हमारी हालत भी ऐसी ही है। तो यह नहीं होना चाहिए, सचमुच तनाव मुक्त होना है। कहते तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर, तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर कि तनाव होता है तनाव के न होने पर। तो बोला था ना ध्यान से सुनो, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं ना, उनका ब्लड प्रेशर ठीक कर दो तो उनको चक्कर आने लगते हैं। तो आज हमको तनाव के साथ इतनी आदत हो गई है कि तनाव को कम करो तो समस्या हो जाती है, परंतु यह ठीक नहीं। वास्तव में आप अगर स्वस्थ जीवन चाहते हो, शांत और सुखमय जीवन चाहते हो, तो जरूर यह तनाव से दोस्ती को खत्म करना पड़ेगा। और उसके लिए आप सब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हैं, तो आपको जो आपका काम है, जॉब स्ट्रेस भी होती है, जॉब के कारण भी बहुत सारी चुनौतियां आती है, परंतु वो जो जॉब की चुनौतियां है वो बीमारी का रूप कब लेती है, जब आपके पर्सनल फैक्टर्स ठीक नहीं है, है ना। स्लाइड्स में देखेंगे तो एक और चुनौती है, दूसरी और बीमारियां हैं, और बीच में जो व्यक्तिगत फैक्टर्स है वो इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग तो चुनौती आती है तो उनकी क्षमता और बढ़ जाती है, कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं और उसके कारण फिर उन्हें बीमारियां होती है। तो ये पर्सनल फैक्टर हमारे कंट्रोल में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम क्या क्या करें। जो भी परिस्थिति है उसको आप दो प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं। या तो कहेंगे कि भी परिस्थिति में अधिकतर जो लोग कुछ करते हैं वो दो चीजें, कहेंगे कि भी 85% तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करते, उसे डरते हैं, दूर भागने की कोशिश करते, अर्थात वह थ्रेट के रूप में लेते हैं। तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, आपकी क्षमता भी कम हो जाती है। और दूसरा है कि उसी परिस्थिति को चुनौती के रूप में लो। अगर चुनौती के रूप में लेंगे तो आप उसको सही रूप से कोप कर पाते। देखो ऐसे समझ सकते हैं कि यह पांच हिस्से है कोई परिस्थिति के, जब आप डरते हो ना तो एक दो हिस्सों का ही सामना कर पाते, दूसरों का नहीं कर पाते। जब उसे चैलेंज के रूप में लेते हो तो पूरा का पूरा आप उसे कोप कर पाते हो। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि परिस्थिति को चैलेंज के रूप में लो, चैलेंज विद द चैलेंजेस। और जब आप चुनौती के रूप में लेते हैं तो आपकी कैपेसिटी कहेंगे 50 गुना बढ़ सकती है। कितना वजन उठा सकते हैं बहन जी, कितना वजन उठा सकते हैं, 25 किलो, 10 किलो, कितना बोलते नहीं है, कितना 25 कि 10 किलो, देखो कहते 10 किलो वजन उठा सकते हैं। आप में 300 किलो वजन उठाने की कैपेसिटी है, इसको सिद्ध किया जा सकता है। एक बार 700 किलो की कार के नीचे एक 3 साल का बच्चा फंस गया, और अगर कार को तुरंत नहीं उठाया जाए तो बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। और मां सामने ही खड़ी थी, आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए तो क्या करेंगे, देखो सोचेंगे नहीं, है ना। मां ने तुरंत गाड़ी को उठा लिया, 10-12 सेकंड तक उठा के रखा कि जब तक बच्चा सुरक्षित बाहर आ गया। तो तो जरूर उसने 250-300 किलो तो उठाया होगा ना। तो जब जब भी चुनौतियां जीवन में आती है तो हम सबकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है। परंतु मैं आपको एक बस एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जो छोटी छोटी समस्याएं आपके जीवन में आती है उसको भी चुनौती के रूप में क्यों स्वीकार नहीं करते। जैसे सवेरे काम वाली नहीं आई, बहुत बार ये टेंशन होता है तो भी हम सब गुस्से में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, परंतु उसको भी चुनौती के रूप में स्वीकार करो। है ना, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो उसे भी चुनौती के रूप में स्वीकार करो। देखो बच्चे के मार्क्स भी 5 गुना बढ़ सकते हैं। ऐसे हर परिस्थिति को चुनौती के रूप में स्वीकार करो। और इसके लिए 3 F याद रखो, इंग्लिश में आपको समझ में आ जाएगा, कुछ है तो लिख भी लो। वह 3 F है, देखो लोगों के साथ नहीं लड़ना है, परिस्थिति के साथ लड़ना है। वो 3 F है, फेस इट, दूसरा है फाइट इट, और तीसरा है फिनिश इट। समझ गए? देखो सब रिपीट करेंगे मेरे साथ, फिर से ऐसे करो। अभी बहनों की ओर से बहुत आवाज आना चाहिए, थोड़ा तो इंग्लिश आता है ना। अच्छा देखो, पहला फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट। तो जब भी प्रॉब्लम आए कहो। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका, हाथ पैसे रखने का, देखो ऐसे जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो कहने का फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट, यस यस यस। बोलो बोलो, लगा ना ऐसा। आप 1 मिनट भी करो, आप में ताकत आ जाएगी। जब ऐसी चुनौती आए तो कुछ स्लोगन्स भी अपने पास तैयार रखो, है ना, उसको भी 2-4 बार रिपीट कर सकते तो भी शक्ति आ जाएगी। देखो एक स्लोगन है, सब मेरे साथ रिपीट करेंगे ना। हाँ, एक स्लोगन है, फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, आग को भी बदल देंगे हम बाग में, विजयी होंगे हर मार्ग पर, कि आने दो मौत को भी सामने। ताली बजाने से बजा नहीं है ताली, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीट करना है ना। थोड़े 5-10 लोग ही बोल रहे, मैं क्यों करवा रहा हूं, देखो मनोचिकित्सक हूं, सोच समझ के करवा रहा हूं, क्योंकि आप घर जाके कुछ ज्यादा करने वाले नहीं है, है ना। यहीं पर जो फायदा हो जाए वो अच्छा है। अब बहुत जरूरी, चैलेंजिंग द चैलेंजेस, मीट द चैलेंजेस। उसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है कि जब भी ये चैलेंजेस आए, समस्याएं आए, तो अधिकतर है ना हम कंप्लेन करते हैं। समझो कि भी आपको प्रमोशन नहीं मिला तो हम कंप्लेन करते कि मेरा बॉस खराब है, है ना, वो मुझे समझता नहीं है, मेरे में कितनी एबिलिटीज है ना? और भी कोई भी चैलेंजेस आए जीवन में, अब बीमार हो जाओ तो भी हम क्या करते हैं, है ना, कंप्लेन करते हैं। परंतु कंप्लेन नहीं करो, आपके कंट्रोल में है वह करो। और बहुत कुछ आपके कंट्रोल में होता है। अगर आप देखेंगे इसको कि आज हमारी ऐसी स्थिति है, आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो हम कंट्रोल में वो थोड़ा सा ही करते, कंप्लेन 85-90% करते हैं। परंतु करना यह है कि जो आपके कंट्रोल में है वह करो। और बहुत कुछ आपके कंट्रोल में होता है। पहले तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखो क्या होना क्या चाहिए, कि आपका ग्राफ ऐसा बनना चाहिए कि जो कंट्रोल में है, 90% कंट्रोल में है उसके बारे में सोचो करो, और कंप्लेन थोड़ी सी ही करो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सोचना हो तो वह है प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस, है ना। अभी अभी उनकी और किताबें भी आई है, आपने शायद नाम सुना होगा। वह एस्ट्रोफिजिसिस्ट है कि जिनको कई साल पहले ऐसे लकवे की बीमारी हो गई कि जिसमें उनके सारे अंग है आज काम नहीं करते, वो अपनी लार को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, नर्स को साफ करनी पड़ती है। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी उनके नियंत्रण में जो है वह कर रहे, और उनके नियंत्रण में क्या है कि उनकी उंगलियां काम कर रही है, सारा अंग काम नहीं कर रहा है, और दिमाग काम कर रहा है, दिमाग को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो वो कंप्यूटर पर ही अपनी जो उनकी थियोरीज है उसी को चेंज करते। भारत में कई बार आए, पहली बार आए तो अखबारों में फ्रंट पेज पे ही हेडलाइन थी, हीरो नंबर वन प्रोफेसर हॉकिंस। तो क्योंकि आज वो उनके नियंत्रण में वो कर रहे हैं, इसके कारण जग उसको ज्यादा सम्मान देता है। तो देखो कई बार आता है ना कि भी एचएससी एसएससी में कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लड़के की फर्स्ट क्लास फर्स्ट रैंक आ जाए तो हमारी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भी इतने से 10x10 के कमरे में कैसे पढ़ा होगा और फर्स्ट क्लास फर्स्ट रैंक आ गई। तो ऐसे ही आप भी आपके कंट्रोल में जो है वह करते रहो। और सबसे अच्छा यह है कि एक लिस्ट बनाओ, क्योंकि जब चुनौती आती है तब मन वह नेगेटिव में ही जाता है, परंतु एक पेपर में लिखो कि भी मेरे कंट्रोल में क्या क्या है। समय का सही सदुपयोग करना मेरे कंट्रोल में है, अच्छा सोचना मेरे कंट्रोल में है, कुछ नया सीखना मेरे कंट्रोल में है, खाने में परिवर्तन लाना मेरे कंट्रोल में, ऐसे बहुत कुछ आपके नियंत्रण में होता है। एक बड़ा सा लिस्ट बना दो और बार बार रिपीट करो, तो आप देखना आप मन शांत भी होगा और उल्टा आपको फायदा होगा। मीट द चैलेंजेस, वो चैलेंज है उससे आप पीछे नहीं जाएंगे, उल्टा आप आगे बढ़ेंगे। कि कोई भी चुनौती अगर उसका सही उपयोग किया जाए तो वह चुनौती आपको आगे बढ़ाती है, पीछे नहीं ले जाती है। तो इस बात को जरूर करना है। सब करेंगे? yes. बोल नहीं रहे मतलब कि आपको जो बोलना हो बोलो। अब इस चुनौतियों को मीट करने के लिए जरूरी है कि आपका दृष्टिकोण सही। दृष्टिकोण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। कलकत्ते में एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, उसने सोचा कि मेरे बच्चों ने गरीबी तो देखी नहीं है, उनको गरीबी का भी तो एहसास होना चाहिए। तो उड़ीसा के एक छोटे से गांव में उनका दूर का रिश्तेदार रहता था, बच्चों को उस गांव में भेज दिया। और एक सप्ताह के बाद जब बच्चे वापस आए तो पूछा, अभी पता चला लोग कितने कष्ट से जीवन जीते हैं? तो उनके सबसे छोटे बेटे ने कहा, डैडी मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि वो अंकल कितने पैसे वाले, हम कितने गरीब हैं। क्या हुआ? उसने कहा कि डैडी मेरा बेडरूम तो 15x20 फीट का ही है, परंतु उनका बेडरूम तो 500x1000 फीट का है, आंगन में खटिया डाल के सब साथ में सो जाते थे। कहा, डैडी हमारा स्विमिंग पूल तो 500 मीटर ही लंबा है, उनका स्विमिंग पूल तो 5 किलोमीटर लंबा है, नदी में स्नान करने जाते थे। कहा, डैडी हमारे घर में तो 3 ही कुत्ते हैं, उनके घर में तो 300 कुत्ते, गली के सारे कुत्ते उनके होते थे, उनके साथ खेलते थे। तो समझ गए, ये सारा नजरिए का खेल है, उसको चुनौती नहीं समझो, यही समझो कि अच्छा है, जो चीजें हैं वह अच्छी है। हाँ, एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट। और एटीट्यूड जितनी ठीक होगी उतना ही आप आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, शायद कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं, अगर ठीक हो सके तो देखो सर। अब एटीट्यूड को ठीक करने के लिए क्या करना है पता है, कि आप खुद एक बार शांति से बैठ करके यह सोचो कि एंगल को कैसे चेंज कर सकते हैं, और थोड़ा सा ट्राई करो ना तो एंगल जरूर चेंज हो सकता है, मुश्किल नहीं है। मैं मेरे क्लिनिक में प्रैक्टिकली कराता हूं, उनको कह देखो ये परिस्थिति है, अलग अलग एंगल से देखो। अच्छा, अभी देखो, वास किसको किसको दिख रहा है, वास दिख रहा है किसको किसको, वास दिख रहा है, दो चेहरे किसको किसको दिख रहे हैं, दोनों किसको किसको दिख रहा है, देखो दोनों है। आप एंगल को चेंज करके देखो, यहां वहां से वास भी है, दो चेहरे भी है, दिखा कि नहीं दिखा? तो परिस्थिति में भी ऐसा ही होता है, अच्छा भी है बुरा भी है, अभी हमको ढूंढना है। इसमें देखो, अच्छे से देखो, देखो देखो, देख रहे क्या हो रहा है, एंगल को बदल लो तो बूढ़ी महिला जवान हो जाती है। अभी कभी नहीं बोलना पत्नी बूढ़ी हो गई, बहने ताली नहीं बजा रही है। एंगल को बदलना है और हर परिस्थिति में हो सकता है, आप थोड़ा सा ट्राई करो, हर परिस्थिति में यह बात हो सकती है। अब देखो, जब भी चुनौतियों को मीट करना होना तो एक सरल काम जो करना है वह है कि वर्तमान में जीने लगो। अधिकतर हम भूतकाल में या भविष्य में जीते हैं, जो दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो ये देख रहे हैं कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। दादी आपको छोटी सी भी गिफ्ट दे तो आप उनका धन्यवाद मानेंगे, है ना? तो ऐसे ही वर्तमान भी एक सौगात है, भूतकाल सपना है, भविष्य कल्पना है, पर वर्तमान सुना है ना, अपना है। बोलो वर्तमान अपना है, बोलो जोर से, बस हमेशा बना के वर्तमान मेरा है, भूतकाल और भविष्य काल मेरा नहीं है, और बस वर्तमान में ही मुझे जीना, और वर्तमान में कोई चुनौती नहीं है, अगर है तो एक मिनट के बाद आएगी, अभी तो नहीं है। तो क्यों ना वो मैं वर्तमान में जीऊं, और सच पूछो तो वर्तमान ही सत्य है, भूतकाल सत्य नहीं है। अभी आप दुखी हो रहे हैं भूतकाल के बारे में सोच के, लेकिन वर्तमान में दुखी हो रहे हो, भविष्य की चिंता कर रहे हो लेकिन वर्तमान में चिंता कर रहे हो, तो इसलिए वर्तमान ही सत्य है। और देखो ये बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से देखना और लिखना भी, इंग्लिश में आप समझ जाएंगे। कहते पास्ट इज एक्सपीरियंस, फ्यूचर इज एक्सपेक्टेशन, एंड प्रेजेंट इज एक्सपेरिमेंट। अभी जो कर रहे हो एक प्रयोग कर रहे हो, कभी करना क्या चाहिए हमें सचमुच, कि यूज एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट इन एक्सपेरिमेंट विच यू आर डूइंग इन प्रेजेंट, सो दैट योर एक्सपेक्टेशंस बिकम अ रियालिटी। तो अभी जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी क्या कर रहे हो साहब, क्या कर रहे हो, मुझे सुन रहे है ना, तो सोचो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनने दो, और भी विचार आएंगे वापस यहीं पे ले आओ। हाँ बस, हाँ दो मिनट ध्यान करेंगे, ब्रह्मा कुमारी में आप देखेंगे ट्रैफिक कंट्रोल का समय आता है। Thank you. से बीच बीच में ध्यान करने से भी हम वर्तमान में आ जाते हैं। और अगर वर्तमान में संतुष्ट जीना है तो कुछ बातों को प्रैक्टिकली करना, कि टीवी देखते देखते खाना नहीं खाओ, या तो खाना खाते समय टीवी नहीं देखो, क्योंकि वो खाना इंपॉर्टेंट है, वहां उसका आनंद लेना है। दूसरा, जब बच्चों से बात कर रहे हैं, पत्नी से बात करते हैं, तब फोन पे बात नहीं करो, नहीं तो बच्चों को ये लगता है कि डैडी को हमको हमारे में इंटरेस्ट नहीं, तो फोन पे बात कर, फोन का जवाब बाद में भी दे सकते हैं। कई बार आप बच्चों से बात कर रहे हैं, फोन आता है, फोन उठाते हैं, हेलो हेलो आईसीआईसी बैंक से फोन कर रहा हूं, आपको लोन चाहिए क्या? तो वो जरूरत नहीं है। तो इसलिए भी बच्चों को आपका टाइम चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, है ना। क्वालिटी टाइम बच्चों को दो, देखो बच्चे ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। ऐसी कुछ बातों से आप वर्तमान में जीने लगेंगे। और वर्तमान में जीने के लिए क्या करो कि जो हमारा अटैचमेंट है पास्ट और फ्यूचर के प्रति, उससे डिटैच हो जाओ। ये जो मैंने कहा ना, वह समझ लो कि वर्तमान ही सर्वश्रेष्ठ है और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने वर्तमान में जीने, सबसे ज्यादा प्राप्ति वहीं पर है। तो आप ऑटोमेटिक हर क्षण का आनंद लेने लगे। अब जब ये चैलेंजेस अलग तरीके से भी आती है कि किसी ने आपका विश्वासघात किया ना, किसी ने आपको धोखा दे दिया, कुछ बहुत ज्यादा दुख दिया आपको, वह भी एक प्रकार से चैलेंज है, उसको भी मीट करना है। तो सबसे अच्छा तरीका है उनको माफ कर दो। तो कहते नहीं 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 नहीं, सारी दुनिया को माफ कर दूंगा, ये बंदे को माफ नहीं करूंगा। देखो कई लोग हंस रहे, मतलब सच है, लेकिन कितना ना किसी ने दुख दिया हो, सबको माफ कर। मैं आपको एक घंटे तक इस पे लेक्चर दे सकता हूं। और माफ इसलिए भी करना है, इसलिए नहीं कि आप उस पर कुछ उपकार कर रहे हैं, उस व्यक्ति को माफ करके आप अपने ऊपर उपकार कर रहे हो कि उसके कारण जो समस्याएं हो रही है, दुख हो रहा है, उससे मुक्त हो सके। और माफ नहीं करने की जो मनःस्थिति है, वह आपको हार्ट अटैक ला सकती है। माफ नहीं करने की मनस्थिति में कैंसर भी हो सकता है, असत्य है। अपने आपको यह भी कहो, मैं आपको कराने भी वाला हूं कि इसलिए उन आत्माओं ने जिन्होंने आपको दुख दिया है, समस्याओं के कारण बने, माफ करना है, ताकि उसके बुरे प्रभाव से आप मुक्त होना चाहते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। को ना, मैं जो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं, उसका सच्चा आनंद मुझे चाहिए। वो तभी होगा जब इन नेगेटिव बातों से आप मुक्त हो सकेंगे। सचमुच माफ करना, कि जब आप माफ कर देते हैं ना, तब सब कुछ खत्म हो जाता है, और फिर जीवन में प्यार हो सकता है, फिर जीवन में शांति हो सकती है। और अब चैलेंजेस को मीट करना है तो एक सरल रास्ता, कि बोले सब कुछ खो जाए, आपके पास कुछ भी नहीं बचे, भी जॉब चला गया, घर चला गया, पत्नी चली गई, सब कुछ चला गया, पैसा चला गया, लेकिन आशा को नहीं खोना है। यू मे लूज एवरीथिंग बट डोंट लूज योर होप, है ना। जब तक आशा है तब तक सच कुछ है। इसी टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है कि अब जो परिवर्तन आता है उसको कैसे हम ग्रीट करें, और इसके लिए इंपॉर्टेंट बात को समझ लो कि एक चीज जो कांस्टेंट है इस दुनिया में वह है चेंज, कि परिवर्तन आना ही आना है, है ना। प्रकृति में परिवर्तन है, एक जैसी मौसम रहती है, कि सर्दी के बाद गर्मी आनी आनी। जीवन में भी परिवर्तन है, कोई कहे मैं सदा सदा जवान रहूं, हो सकता है बुढ़ापा आना ही आना है। यहां तक कि परमात्मा ने जो ये सृष्टि चक्र की रचना की है, या तो ये काल चक्र भी परिवर्तन है कि त्रेता के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद कलयुग आता है, कलयुग के बाद वापस सतयुग आता है, आपको समझाएंगे। तो ये बात अगर आप समझ लो कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो भी आप परिवर्तन को इजीली ग्रेट कर सकेंगे। और आपको है ना इस विषय पे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सब जो भी साउथ से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, हाँ, परिवर्तन को देख के आए, हाँ, और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहिए जो लोग साउथ से यहां पहुंच गए। देखो हाथ को ऐसे करो, सभी करो, करो ऊपर करो, पीछे करो, दोनों हाथों से पीठ पे रखो, उठाओ, फिर से रखो, पांच बार करो। क्या कर रहे हैं? शाबाशी दे रहे हैं। हाँ, अपने आप को शाबाशी दो कि भाई इतनी बारिश में भी हम पहुंच गए, क्योंकि अभी भी अच्छे से ताली नहीं बजा रहे। तो हमने तो सोचा था कॉन्फ्रेंस में 500 लोग भी पहुंचेंगे कि नहीं मालूम नहीं, हाँ, इतनी बारिश से सब ट्रेन कैंसिल हो रही है, और बहुत अच्छा, लोग कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है। हाँ, बंबई में तो बहुत सारी, जो बंबई से काफी लोग आने थे, उनकी ट्रेन भी कैंसिल हो गई तो भी निश्चिंत है। कईयों ने तो क्या किया पता है, तत्काल में दूसरे दिन की बुकिंग करा ली। हाँ, और आगे तो बस यही बेस्ट चीज। और टू ग्रीट द चेंज, ये तीन शब्द याद रखो, ये इंग्लिश में बहुत अच्छे है, जिसको कहा गया है कि जब भी परिवर्तन आता है तो ग्रीट इट, मीट इट एंड बीट इट। समझाता हूं आपको, एक तो ग्रीट करो मतलब वेलकम करो, कहो हेलो, हाय, वेलकम, है ना, डरो नहीं उससे, हाँ, ग्रीट इट। देन मीट इट, जो भी परिवर्तन है वो कुछ अपेक्षा रख करके आता है, वो अपेक्षाओं को पूरी करो और फिर उसको बीटी, उसे हरा दो। तो बस अगर एक मानसिक स्थिति बनेगी ना कि भी परिवर्तन क्यों आता है, एक तो हर परिवर्तन आपको आगे बढ़ाने के लिए आता है, अगर सही उसका उपयोग किया जाए तो हर परिवर्तन में आप आगे बढ़ सकते, हर परिवर्तन आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है, है ना। हम नहीं सीखते हैं वो हमारी गलती है, तो इसलिए हर परिवर्तन से आगे बढ़ो। मेरे एक मित्र है कलकत्ते में, काफी समय पहले की बात है कि उनको कंपनी से कहा गया कि तुम रेजिग्नेशन दे दो, अच्छी पोस्ट पर। पहले तो जब ये चेंज आया तो बड़े डिप्रेस्ड हो गए कि अरे इतना अच्छा जॉब था, एक दिन में जॉब चला गया, अभी मैं क्या करूंगा। फिर एक दो दिन में नॉर्मल है तो सोचने लगे, सोचा कि भी बिजनेस करना, और फिर बिजनेस करने लगे और बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन गए। उन्होंने अपने लेक्चर में भी एक बार कहा, हाँ, श्रीलंका में उनका बड़ा बिजनेस था, मुझे वहां बुलाया था, उनके जो भी बड़े बड़े कंपनीज वाले थे उन सबके लिए एक सेशन रखा और मुझे बुलाया, उनके सबके बीच में उन्होंने कहा कि देखो आप सब आज श्रीलंका के इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन यहां पर मेरे सामने हो, और वो क्यों हो पता है? क्योंकि आज से 15 साल पहले मेरा जॉब चला गया था, अगर वो मेरा जॉब नहीं चला गया होता तो शायद मैं कहीं जनरल मैनेजर बन गया होता, लेकिन इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनता। तो परिवर्तन, हाँ हाँ, बजा सकते ताली। कि परिवर्तन तो वह आपको एक तो आगे बढ़ाता है और दूसरा कि जब यह परिवर्तन आता है तो सोचो कि भी कहीं ना कहीं दो चीजें कि एक तो मेरे में कुछ कमी है जिसके कारण यह परिवर्तन आया और दूसरा यह भी सोचो कि भी परमात्मा ने यह परिवर्तन लाया तो मेरे में वो कैपेसिटी है तब। जैसे आप कोई बच्चे को भी ज्यादा काम देते हो क्योंकि आप सोचते हो कि यह ठीक से कर पाएगा, आपको पता है कि नहीं कर सकेगा तो आप उसको काम देंगे। तो परमात्मा भी जब हमें कोई परिवर्तन हमारे सामने लाता है तो उसे ये पक्का होता है कि भी ये व्यक्ति कर पाएगा। क्या करना चाहिए है ना, खुश होना चाहिए। परिवर्तन आए तो भी भगवान ने मुझे अभी एक अलग रोल दिया है कि जो ये सोच समझ के दिया है कि मैं यह कर सकता हूं। एंड टू ग्रीट चेंज, अपनी आईक्यू को बढ़ाने की जरूरत नहीं, ईक्यू को बढ़ानी है। ये बात भी जो मैंने आपको बताई ना वह यही है कि इमोशंस को अच्छा बनाओ ना। भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है और सब कुछ आप भी जो काम करते हैं ना भावना से करो। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुझे याद आता है कि एक बार मैं कहीं गया था, ऐसा ही लेक्चर था, तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर के बहुत उसकी आंखों में आंसू थे, कहा कि देखो हमने एक काम किया। कहते कि भाई जब रिटायर्ड हो जाते हैं ना तो कुछ प्रॉब्लम्स होती, पेंशन के लिए उनको समस्याएं होती है, इन लोगों को कहते कि बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं तब भी उनको पेंशन में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैंने एक बार डिसाइड किया कि जितने भी है जैसे उनके अंडर में होंगे कि 7,000 लोग हैं जिनको चक्कर काटने पड़ते गलत, हमको मेहनत करनी है और हम ये जल्दी जल्दी इनका काम हो जाए, पूरी सेटअप बनाए। उनके अंडर में जो लोग थे कहते उनको भी मैंने भावुक होकर के कहा कि 2 घंटा ज्यादा काम करना पड़े तो करो, लेकिन ये जो सारे इनके केसेस है हमको सॉल्व कर दे। हमने थोड़ी मेहनत की 2 महीना लेकिन वो सारे सॉल्व हो गए। और जब लोग हमारे पास आते थे भावुक होते थे, आंखों में आंसू होते थे, धन्यवाद देते थे, तो कहा कि वह सबसे बड़ी प्राप्ति थी, न केवल मैं लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में जो मेरे अंडर में लोग हैं वो सब भी बड़े खुश थे कि इतने 7,000 लोगों को जो समस्या हो रही थी हमने सॉल्व कर दी। तो ना दिस इज मोर देन इवन भारत रत्न का अवार्ड मिले, उससे भी ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा कुछ जो आपके अंडर में हो, आप जो भी डिपार्टमेंट में हो, जो बेचारे दुखी हो रहे जिनके सामने समस्याएं हैं उनको इस प्रकार से मदद करो है ना। पैसा कब मिलेगा तो चलेगा, परंतु यह बात इंपॉर्टेंट है, विस्डम इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ ना, पैसे से ज्यादा विस्डम जरूर। और वो आ गई तो आप ऑटोमेटिकली इमोशनली इंटेलिजेंट बनेंगे। और इमोशनल इंटेलिजेंस देखो ऐसा है कि भी एक हिमशिला होती है ना, बर्फ का पहाड़ होता है, उसमें छोटा सा हिस्सा बाहर पानी में दिखाई देता है, 90% डूबा होता है। तो बुद्धि भी ऐसी है, आईक्यू छोटा सा हिस्सा, ईक्यू इमोशंस बहुत बड़ी बात है। इमोशनल होना नहीं है लेकिन इमोशंस को मैनेज करना है, तब आप परिवर्तन को ग्रीट कर सकोगे और खुशी खुशी करोगे। उल्टा जब परिवर्तन आएगा तो आपको आनंद होगा कि यह सच्चा हुआ, इससे मैं और कुछ नया सीखूंगा, मुझे बहुत फायदा है। एक पावरफुल नियम है कहते लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने भी पढ़ा होगा कि हम कोई चीज के दूर नहीं जा सकते, किसी के नजदीक जा सकते। जब भी परिवर्तन आता है तो टेंशन हो जाता है, डर लगता है, निराशा आ जाती है ना, परंतु आप टेंशन से दूर नहीं जा सकते, शांति के नजदीक जा सकते हो। शांति के विचार करो, डर से दूर नहीं जा सकते, निर्भयता के नजदीक जा सकते हो। निर्भयता के विचार करो, स्वमान, आत्मविश्वास है ना, इन सब के आप विचार करो और बार बार सोचते रहो, इमोशनली सोचो। साइकोथेरापी में हम लोग एक टेक्निक कराते हैं जिसका नाम है पैफ मेथड, PEF। पी का मतलब है पावर, ई मतलब इंथुजियाज्म और एफ मतलब फीलिंग, कि जब भी परिवर्तन आए तो कुछ ऐसे वाक्य बनाओ और वो पावर, इंथुजियाज्म, फीलिंग के साथ रिपीट करो। जैसे उदाहरण के रूप में कि मैं ये कर सकता हूं, मेरे में शक्ति है, मैं करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, समझ रहे? क्योंकि इसे धीरे धीरे सोचते हो तो नेगेटिव में ही जाते हैं। हम लोग कई बार ये कराते हैं तो लोग क्या सोचते हैं मालूम है? लोग सोचते हैं कि आप पागलों के डॉक्टर हो इसलिए ऐसा करते हो, नहीं समझे? अच्छा, लेकिन वो पागल और आप में फर्क, क्योंकि वो पागल रास्ते में हंसते हैं कि उनको पता नहीं है रियलिटी क्या है, परंतु आप तो रियलिटी को समझ करके करने वाले हो। तो इसलिए जब भी ये चेंज आए तो कुछ ऐसी बातें बनाओ कि भी मेरे में कैपेसिटी है, मैं करूंगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छे दिन आने ही वाले हैं। हर दिए पहले अंधियारा होता है, हर अंधियारी रात के बाद सवेरा होता है। तनाव में आ जाते हैं लोग मुसीबत को देखकर, पर हर मुसीबत के बाद सुख का डेरा होता है। ये ना, मुसीबत आई तो अभी सुख आने वाला है, जितनी बड़ी मुसीबत उतना बड़ा सुख है ना। बड़ी मुसीबत आए तो उल्टा खुश होना। देखो, सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है उससे पहले घोर अंधियारी रात होती है, तापमान भी कम से कम होता है। जैसे जीवन में भी घोर अंधियारी रात आ जाए तब सोचो कि अब पक्का जल्दी से सुबह का सूरज उगने वाला, तो ये मानसिक स्थिति आपको बहुत बड़ा मदद करेगी। और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, बस समझो कि डिपार्टमेंट में भी आपको लगे कि लोग बहुत तंग कर रहे हैं मुझे, तो तब डिस्टर्ब होने के बाद उनको अच्छे वाइब्रेशन दो। कभी यहां 3 दिन हो ना, सभी 3 दिन हो ना यहां, सब सेशन अटेंड करेंगे कि घूमने जाएंगे? सब सेशन अटेंड करना, देखा, आपको सिखाएंगे अच्छे से कि कैसे ध्यान करना, और अच्छी एनर्जी उनको दो, अच्छे वाइब्रेशंस उनको दो, उनमें भी परिवर्तन आ जाएगा, है ना। तो इससे चेंज से, बॉस खराब है तो कंप्लेन नहीं करो, बॉस को अच्छे वाइब्रेशन दो सवेरे, सचमुच होगा। देखो, मैं रोज सवेरे उठ के ना, मेरी एक प्रार्थना है, सवेरे उठ के मैं थोड़े समय, हम योग करते हैं पहले आधा घंटा, योग करने के बाद मैं ये विचार करता हूं कि भगवान, इस दुनिया में किसी को भी मानसिक बीमारी नहीं देना, और दूसरा कि मेरे सब पेशेंट ठीक हो जाए, और मैं देखा है सचमुच ठीक हो जाते। आश्चर्य होता है, और जो मेरे जैसे डॉक्टर वो भी बोलते हैं, डॉक्टर आपके पेशेंट कैसे ठीक हो जाते? तो मैं उनको, देखो तुमने दवाई दी वही दवाई मैंने दी, मैंने कोई ज्यादा फर्क नहीं किया है ना, परंतु उसके साथ साथ उनको दुआ भी दी तो ये पेशेंट ठीक हो गए। तो आप भी कर, आप भी वो अच्छे वाइब्रेशंस दो, देखो ठीक हो जाएंगे। हम डरते हैं, जब परिवर्तन आता है तो डर जाते हैं, जैसे नहीं जॉब चला गया आप डर जाते हैं, कि भाई ट्रांसफर हो गई तो भी, एक छोटे से शहर में ट्रांसफर हो गई आप डर जाते हैं, परंतु डरो नहीं। कहते डर का सबसे अच्छा इलाज है उसका सामना करना, ओनली थिंग यू हैव टू फियर इज फियर, है ना, डर से ही डरो और कोई बात से डरो नहीं। सोचो वह छोटे शहर में भी जाके पूरा परिवर्तन ला दूंगा, सबसे अच्छे से अच्छा काम करूंगा, कम्युनिकेशन से भी डरो नहीं। कहीं पर जब चेंज आता है ना, तब वो चेंज को अगर मीट करना है तो आपको लोगों को मिलना पड़ेगा, अपनी बात समझानी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन से भी डरना नहीं है। भले आप 5 लोगों को मिले, एक व्यक्ति तो आपको सहयोग देगा ही देगा। तो इसलिए डर से मुक्ति प्राप्त कर लो। और बहुत अच्छी बात है, देखो आपने भी सुना भी होगा बहुतों का, हम ब्रह्मा कुमार, इसमें रिंग टोन भी है, आप भी वो कर सकते। वह है ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। अब बोलेंगे सब जोर से, बोलो ईश्वर अपने साथ है। जी जी नहीं, सब बोलो, देखो ऐसे बोलो, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात। बोलो जोर से। बहने बोली नहीं रही, खाना खा के नहीं आए। बोलो जोर से। जब ये चेंज आ जाए ना, ये आप बोलना, देखो एकदम ठीक हो जाएंगे। और अभी मीट करना है ना, तो थोड़ा बड़े वर्क करना पड़े। देखो हार्ड वर्क से प्रॉब्लम नहीं होता ना। कई लोग कहते हैं किसने बहुत हार्ड वर्क किया ना तो उसको ब्लड प्रेशर हो गया, किसने हार्ड वर्क किया तो उसको सरदर्द हो गया। देखो हार्ड वर्क से सरदर्द नहीं होता है, ब्लड प्रेशर नहीं होता है। सिर्फ जब आप टेंशन लेते हो तब प्रॉब्लम्स आते। तो भले आपको 16 घंटे भी काम करना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखो, हार्डर यू वर्क बेटर यू फील, बेटर यू फील हार्डर यू वर्क। और एक बार आप कर लो तो जीवन भर आप कर सके। हमारे डॉक्टर अशोक मेहता है, 76 इयर्स के हैं, आज भी मैंने देखा 18 घंटा भी काम करते हैं। उनको एक बार पूछा कि सर आपकी इतनी एज है, 18 घंटा कैसे काम करते? तो कहते कि जब मैं छोटा था, अमेरिका में पढ़ रहा था, तो कभी कभी 3-3 दिन तक लगातार 1 घंटा सो के भी मैंने काम किया, और वो जो किया वो आज काम आ रहा है। कि तब जो 23 घंटा भी काम करते थे तो आज भी वो हेल्प, अभी 18 घंटा तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे माइंड को रिलैक्स रख के हार्ड वर्क करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने। एंड सक्सेस इज बर्थ राइट ऑफ एवरी नोबल थॉट। बस अच्छे विचार करो, है ना। कितना भी परिवर्तन आ जाए पॉजिटिव सोचो। देखो आपको अपना एक उदाहरण देता हूं जो बिल्कुल सत्य है। जब मैं 19 साल का था, फर्स्ट MBBS में पढ़ रहा था, तभी मेरे सर के बाल झड़ने लगे। सोचिए 19 साल का लड़का आधा गंजा हो तो लोग क्या क्या बोलेंगे, है ना। सब मैंने सहन किया। जब मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की बंबई में, तब मैं 29 साल का था। मित्रों ने कहा था कि 2-3 साल तुम्हारे पास कोई ज्यादा पेशेंट नहीं आएंगे, परंतु 2-3 महीने में अच्छे खासे पेशेंट आने लगे। मुझे आश्चर्य होता था कि इतने सारे पेशेंट कहां से आ रहे। एक दिन इसका रहस्य पता चला। एक कंपनी सेक्रेटरी मेरे पास आए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब लगता है आप हमारे एरिया में सबसे सीनियर साइकेट्रिस्ट है। मैं कभी जूनियर डॉक्टर के पास नहीं जाता हूं। मुझे तो ये जानने में पूरे 10 साल लगे कि टकलू बनने से क्या फायदा होता है। अभी भी हंस नहीं रहे, देखो अपने आप पे हंसाता हूं तो भी नहीं हंसते। आपको 10 साल नहीं रुकना पड़ेगा, 10 दिन में या 10 महीने में कोई ना कोई अच्छी बात जरूर सामने आ जाएगी। तो इसलिए ये पक्का कर, बस पॉजिटिव थॉट यही है कि आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज आया, सब कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन सोचो भविष्य में कुछ इससे मुझे फायदा होने वाला है। इसीलिए भगवान ने भेजा ये चेंज, है ना। तो एक्सेप्ट, और वो स्टेट ऑफ माइंड बन गई, बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी आर्ग्यूमेंट से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, देखो हॉर्न बजा करके ट्रैफिक जाम को ठीक कर सकते हो, आप सब ट्रैफिक से नहीं कर सकते। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, एक दूसरे की बातें सुनने से, समझने से, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। और सामान्य लोग क्या करते हैं कि जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप आज जो हो उसके बीच में गैप होता है, आम व्यक्ति उसमें डिस्टर्ब होता है। और सफल व्यक्ति वह है कि वह गैप के बीच में रिलैक्स करता है ना। तो आप भी ये सोचो कि भी परिवर्तन आया, समस्याएं हैं, परंतु जो बीच में समय है अभी, बस इट्स अ फैक्टर ऑफ टाइम, वो 10 दिन में सॉल्व हो या 10 साल में हो, वो गैप के बीच में सोचो कि मुझे रिलैक्स होना है, तभी आपका सुप्रा कॉन्शियस जागेगा। जो जबरदस्त हमारे में शक्ति है वो सुप्रा कॉन्शियस में है, वो जागेगा तो जीवन में कमाल हो सकती है। और अपने आप को ट्रस्ट करो, आज का आदमी अपनी परछाई पर भी विश्वास नहीं करता है। जो परमात्मा ने हमें शक्ति दी है उस पर विश्वास करो। और ये याद रखो कि तुम व्यक्ति नहीं शक्ति हो। क्या बोलो? ना बोलो, मैं व्यक्ति नहीं शक्ति हूं। जोर से बोलो, अभी भी सब नहीं बोल रहे, और एक बार जोर से। तो इन्हें पक्का ये करेंगे ना आप, तो आप में शक्ति है सच में, और कैसा भी चेंज हो इजीली कर सकते। भी चेंज को अगर ग्रीट करना है ना, तो व्यक्तित्व में चेंज लाना पड़ेगा। आज हम लोगों की कोकोनट पर्सनालिटी, नारियल जैसी पर्सनालिटी है। नारियल बाहर से स्ट्रांग होता है, अंदर से ढीला होता है। इसीलिए देखो ये पर्सनालिटी अच्छी नहीं। नारियल क्यों फोड़ा जाता है मालूम है? कि पर्सनालिटी को फोड़ो, बाहर से बहुत दिखावा करो, गुस्सा करो, ईगो रखो, वो अच्छा नहीं। एक्चुअली क्या करना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी मैंगो जैसी होनी चाहिए। आम बाहर से सॉफ्ट होता है, अंदर से स्ट्रांग होता है ना। तो हमको भी क्या करना है, अंदर से स्ट्रांग बनना। तब जो भी चेंज आएगा इजीली आप उसको फेस कर सकेंगे। और बहुत बड़ी बात है, सुनो। यहां तक कहूंगा कि परिवर्तन को भी सुनो। कहते हैं तनाव की एक परिभाषा है। तनाव क्या है? तनाव एक संदेशवाहक है जो ये कहने के लिए आया है कि परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इसलिए तनाव को भी सुनो, एक दूसरे को भी सुनो, तो परिवर्तन को फेस करना इजी हो जाएगा। और क्रोध से मुक्ति प्राप्त करो। तो एंगर इज अ एटम बॉम्ब इन ब्रेकिंग अवर रिलेशनशिप। और क्रोध पर अगर विजय प्राप्त करना है तो नहीं, बहुत सारे मेरी सीडीज भी है, आपको शायद मिलेगी, हाँ, उसमें घंटों क्रोध के बारे में समझाए, मेरी किताबों में भी है, लेकिन ये सब चीजें काम नहीं करती है। एक्चुअली एक चीज ही काम करती है सचमुच, कि क्रोध से जो अपोजिट चीजें हैं ना उसको जीवन में लाओ। क्रोध का उल्टा क्या है? हाँ, प्रेम। जीवन में प्रेम लाओ। क्रोध का उल्टा है धैर्यता। जीवन में धैर्यता लाओ, शांति लाओ। हाँ, सब एक बार खड़े हो जाएंगे, बहुत समय से बैठे हैं ना। हाँ सर, यहाँ आइए, आइए सर आगे। हाँ देखो, हाँ एक एक पार्टनर बनाओ। सर मेरे पार्टनर है, भाई भाई बहनों बहनों को पार्टनर बनाएंगे, बनाओ बनाओ पार्टनर। देखो आपके पास कोई चीज हो वो बड़े प्यार से अपने पार्टनर को दो, मैं देके दिखाता हूँ, फिर सब मुझे फॉलो करेंगे, प्रॉमिस? ओके। हाँ देखो, अपने पार्टनर का चेहरा देखो। करो करो करो, गले मिलो, जब तक गले नहीं मिलेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ मुन्ना भाई MBBS, जादू की झप्पी। अच्छा ओके, बैठ सकते ना। तो क्या करो, क्रोध नहीं करो, प्यार करो ना, प्यार से बहुत कुछ प्राप्त होता है, क्रोध से नहीं होता। ठीक है, अच्छा देखो अभी आपको प्रैक्टिकली ध्यान कराता हूं, अब यहां सेटल हो जाइए। सर क्यों खड़ा किया पता है, बहुत समय से बैठे थे ना तो आप भी थक गए हो। हम थोड़ा सा 5-7 मिनट ध्यान का अभ्यास करेंगे। अब तक जो कराया ना वो प्रैक्टिकली करना है ना अभी, क्योंकि अब तक आप थियोरी समझे, अभी आप प्रैक्टिकली मैं आपको कराता हूं। एक ये ध्यान का अभ्यास है, बड़ा पावरफुल है। आप मेरे साथ साथ बच करना, समय कम है, ज्यादा बोलता नहीं हूं, आप मेरे साथ साथ करना, सचमुच हो जाएगा। हाँ, ध्यान भले बड़ी गहरी विधि है, ये जो मेरी विधि है वो एक सामान्य आप जैसे लोग जो इन्होंने ध्यान के बारे में ज्यादा सीखा नहीं है उनका भी इससे ध्यान लग जाता है और बहुत बड़ा आपको फायदा, जीवन में भी फायदा होगा। अब देखो कमर को सीधी रख करके बैठिए, दोनों पैर जमीन पे रख दो थोड़े अंतर पर, हाथों को ऐसे मोड़ लो, आपने कुछ अपने पास रखा है तो उसको नीचे रख दो। बल राजयोग का अभ्यास खुली आंखों से किया जाता है, तो आप में बहुत भाई बहन पहली बार कर रहे होंगे तो आप चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं, और जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे ही सोचना, वैसे ही चित्र भी निर्माण करना तो बहुत फायदा होगा। सारे शरीर को एकदम हल्का कर दीजिए, बिल्कुल शरीर को रिलैक्स कर दिया। एक गहरा सांस लेंगे, सारे शरीर के अंग एकदम हल्के हो रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स स्थिति में है। ये सोचिए मैं एकदम हल्का हो गया हूं और मैं हवा में तैर रहा हूं, एकदम हल्के होकर के हवा में तैर रहे हैं। अब धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, एकदम हल्के हो गए, अभी उड़ भी सकते हैं, उड़ रहे हैं, उड़ने का आनंद ले रहे हैं। मैं एक शक्ति हूं, प्रकाश स्वरूप शक्ति हूं, मैं उड़ रहा हूं। उड़ने का पूरा आनंद लीजिए, उड़ते उड़ते आप माउंट आबू की ओर जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। उड़ते उड़ते गुरु शिखर की पहाड़ियों में जा रहे हैं, गुरु शिखर की पहाड़ियों में पहुंच गए हैं, वहां के वातावरण का पूरा आनंद ले रहे हैं। शीतल हवा चल रही है, दूर दूर जंगल दिखाई दे रहे हैं। आप देखते हैं कि दूर से जानकी दादी आ रहे हैं, उनको देखते ही आपको बहुत अच्छा लगता है कि मेरे सभी चैलेंजेस का समाधान मिल जाएगा। जैसी दादी नजदीक आते हैं आप उनके आंखों में देखते हो और शक्ति को प्राप्त करते हो, दादी की आंखों से आपको शक्ति मिल रही है। दादी आपको प्रसाद खाने के लिए देते हैं, आप प्रसाद खाते हैं तो भी आप
में बहुत पवित्रता का अनुभव हो रहा है। अब आप दादी को कहते हो कि दादी मेरे जीवन में ये चुनौतियां है, सब परिवर्तन आ गया है, मैं क्या करूं। दादी आपको बताती है कि मेरे साथ साथ चलो, आप दादी के साथ साथ जाते हो। दादी एक बहुत बड़ी गुफा में जा रही है, गुफा में आप पीछे पीछे जा रहे हो। जैसे पीछे पीछे जाते हो बहुत रिलैक्स हो रहे हो, अंतर मन की भी गहराई में जा रहे हो, एकदम अंतर मन की गहराई में चले गए। और गहराई में चले जाओ, वो देखते हो कि बहुत बड़ा हॉल है, उसने स्टेज पे एक चेयर रखी हुई है। दादी जी आपको उस चेयर पर बैठने के लिए कहते हैं। अब जैसे उस चेयर पर बैठते हो और एकदम हल्के हो जाते हो और शांति का अनुभव हो रहा है। आप अपनी राइट साइड में देखते हो तो ऐसे लोग बैठे हैं जिनको आपने दुख दिया है, जिनके साथ आपने बुरा व्यवहार किया है, क्रोध किया है। दादी कहती है कि इन लोगों की माफी मांग लो, बहुत अच्छे से माफी मांग लो, सच्चे दिल से आप उनकी माफी मांगते हो कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने यह आपके साथ बुरा व्यवहार किया। भावुक होकर के आप उनकी माफी मांगते हो, सब लोग आपको माफ कर देते हैं, आप एकदम हल्के हो जाते हो, आपका बोझ हल्का हो जाता है। आप लेफ्ट साइड में देखते हो तो ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने आपको दुख दिया है, आपका विश्वासघात किया है, आपके साथ बुरा व्यवहार किया है। दादी जी कहते हैं कि उनको माफ कर दो। को इसलिए माफ कर दो, उसमें आपका ही फायदा है, आप उनके प्रभाव से मुक्त होना चाहते हो, आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो, इसलिए उन्हें माफ कर दो। बिना कोई अपेक्षा के उन्हें माफ कर दो। पूरी तरह से उन्हें माफ कर देते कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें पूरी तरह से माफ कर दिया ताकि मैं अपनी गहरी शांति का अनुभव कर सकूं। आप और रिलैक्स हल्के हो जाते हैं, आप वापस आके अपनी चेयर पर बैठते हो, बहुत शक्ति से भरपूर हो गए हो, बहुत हल्के हो गए हो। अब देखते हो सामने एक दिव्य ज्योति टिमटिमा रही है, उस ज्योति से बहुत ही शक्तिशाली किरण निकल रही है और वो शक्तिशाली किरण निकल के आप के पास आ रही है। बहुत शक्तिशाली किरण है, वो आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर आत्मा को बहुत शक्तिशाली बना देगी। आप सर्व शक्तियों से भरपूर हो गए हो, सभी पावर से भरपूर हो गए हो, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ऐसे भरपूरता का अनुभव कर अब आप उस गुफा से वापस आते हो, एकदम आपकी एनर्जी बढ़ गई है। बाहर आके दादी जी को वापस मिलने का वादा करके अब वापस उड़ते उड़ते यहाँ पर आ रहे हो, एकदम नया जीवन मिल गया, नई राह मिल गई, बड़े आनंद से बड़े खुशी से वापस अपने स्थान पर आ रहे हो। तुम अपने स्थान पर आ गए हो, धीरे से आंखें खोलो, बहुत अच्छा लगता है, एकदम रिलैक्स लग रहा है। धीरे से आंखें खोलिए। ओम शांति शांति। अच्छा, किसको किसको बहुत 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 अच्छा लगा? हाँ, सबको नहीं, सबको नहीं, नहीं नहीं, जिसको भी बहुत 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 अच्छा लगा वो खड़े हो जाओ। सबको नहीं होना है, जिसको बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जिसको बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ आओ, फटाफट आओ, देखो स्टेज पे आओ, आइए आइए, जल्दी जल्दी आ जाइए फटाफट। रुको रुको, हाँ जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जिसको बहुत 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 अच्छा लगा उसको, सबको नहीं आना है, नहीं तो यहाँ स्टेज पर जगह नहीं है। अच्छा, जिनको बहुत 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 अच्छा, भले वाह वाह वाह, थोड़ा थोड़ा दूर 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 यहाँ आया। हाँ, हाँ संभाल,
संभाल में भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा।
थैंक यू, थैंक यू, थोड़ा थोड़ा, बस 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 बस, अभी रुको रुको, टाइम कम है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। भले हाँ, तुम बोले वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, अभी नहीं आना स्टेज पे, नहीं तो बोले क्या स्टेज पे आने का मौका है। अच्छा देवी, अभी कुछ करना है। थैंक यू, देखो कुछ करना है अभी, यहाँ के लिए अभी तक मैंने आपको समझा। बेटे इधर आ जाओ, हाँ यहाँ आया, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, आ जाए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, थोड़ा इधर हो जाए। आ देखो, अभी तक मैंने सुने, अभी आप सुनाइए कि सारे प्रक्रिया में आपने क्या किया और आपको क्या लगा, शॉर्ट में बताना है।
हमें 100 साल में भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जैसे डॉक्टर ग्रीस है। अच्छा, मेरे जीवन में अगर पूरा जीवन भी निकल जाए तो ऐसी बात नहीं बता पाएगा। ये कैंसर के बारे में बताइए, तनाव के बारे में।
वेरी गुड। अच्छा, क्या क्या फील हुआ बताओ बेटे। हाँ यहाँ जहाँ आइए आइए, नहीं लेकिन इधर आ जाओ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ
सर वॉल, यही मैसेज मिला।
अच्छा, मैसेज मिला ना बच कुछ। हाँ, क्या फीलिंग आई?
गांव से एकदम मुक्त हो गए ऐसे लग रहा है।
वेरी गुड।
मैं जो इस प्रोग्राम में जो हमें सीखने को मिला कि कभी भी जिंदगी में नेगेटिव नहीं होना, जब भी नेगेटिव जा रहा है तो उसको डिलीट करो और उसको पॉजिटिव में लेके
चलो, कर दो। वेरी गुड। हाँ, और दिखा दिया, यंगस्टर्स को देते हैं।
बहुत अच्छा लगा, अब एकदम फ्रेश हो गया माइंड।
वेरी गुड। है ना, बच्चों को भी बोलना चाहिए ना, आपके भी बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, तो उनको बोलो कि भी मेडिटेशन करो, आप फ्रेश हो जाएंगे।
पर्सनल एटीट्यूड अच्छा हो गया, आध्यात्मिक शक्ति जग गया, दिव्य शक्ति ज्ञान ज्योत सब प्रेरणा मिल गई।
वेरी गुड।
यात्रा सफल हो गई है।
देखो बताओ,
हमारी तो यात्रा सफल हो गई है, इतना पॉजिटिव थिंकिंग लेके जा रहे हैं।
वेरी गुड। आप पहले बैठ सकते हैं। थैंक यू। आप पहले पहले अभी फिर बता रहे ओम शांति। और भी जिनको अच्छा अनुभव है मुझे मिलना, तो मैं भी सुनूंगा आपसे क्या फील, फिर बात। अभी तो पूरा 11:30 तक पूरा करना है। ओके ओके, थैंक यू। संभालना संभालना है, कंप्यूटर को संभालना।
समय
हाँ हाँ, जरूर जरूर भाई पूछे। अभी जिनको भी थोड़ा भी मेरा टाइम चाहिए तो मैं यहीं हूँ 3 दिन, आप मुझे भी। हाँ सवेरे मैं आपको कल एक्सरसाइज भी कराऊंगा, आज तो देरी हो गई थी।
थैंक
आने में देरी हुई, थैंक यू।
अभी फियर को मैं डियर नहीं करूंगा।
हाँ देखो बोलते फियर को डियर नहीं करूंगा, बहुत क्या लगा बच्चा, देखो बच्चों
को लाइट लगा, बहुत अच्छा, मतलब ऐसे फ्रेशनेस लगी,
फ्रेशनेस लगी, वेरी गुड। देखो बच्चों
मेरे को आपसे प्रेरणा मिली है।
अच्छा, वेरी वंडरफुल, थैंक यू। देखो बैठिए, ओके, थैंक्स अ लॉट। देखो और भी ज्यादा
मेरे को बहुत खुशी लगा,
वेरी
गुड। फिर प्रेजेंट
में जीने का, बस बस ओम शांति, बस सर को भी बोलना है, ओके बस एक मिनट आपके लूंगा, क्योंकि अभी जो किया ना वो फॉलो करना, उसको और अच्छा करने के लिए दो तीन तरीके हैं। एक तो मेरी कुछ किताबें भी अवेलेबल है, मेरी 5 बुक्स है। एक अच्छी किताब जो सब अगर आप हिंदी पढ़ते तो जरूर पढ़ो, मन की बात, उसमें करीब 350 प्रश्नों के उत्तर है। और जो इंग्लिश जानते हैं बहुत अच्छी किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेस फ्री लिविंग, आप देखना, यहाँ हमारा गेट नंबर 2 है, उसके बाजू में ओम म्यूजियम है, वहां सब किताबें मिलेगी आपको। कुछ मेरी सीडीज भी है, उसके द्वारा भी आप आगे इन्फॉर्मेशन को ले सकेंगे। आपको बाई चांस अगर मेरा एड्रेस चाहिए तो भी रतन भाई यहां बैठे खड़े हो जाएंगे, रतन भाई उनसे ले सकेंगे एड्रेस चाहिए तो। हाँ, और कभी आपको ऐसे प्रोग्राम फुल डे के सेमिनार भी होते हैं, जैसे अभी तो मैंने आपको करीब 1.25 घंटा समझाया, फुल डे के सेमिनार बंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में होते हैं, तो उसमें भी आप आना चाहते तो भी उनको नाम एड्रेस देंगे, हम आपको बुलाएंगे। इन पंक्तियों के द्वारा पूरा करता हूं। यात्रा में होती है शिकायत मुसाफिर को, इसीलिए तो रेलवे में भी रिजर्वेशन होता है, तो कुछ तो करो उस लंबी यात्रा के लिए जहां न टिकट न स्टेशन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गिरीश पटेल जी। अभी हम सभी के बीच में इस कार्यक्रम के दौरान ही एक महान प्रशासक और ITDC के मैनेजिंग डायरेक्टर भ्राता गिरीश शंकर जी हम सभी के बीच पधार चुके हैं। आप सभी करतल धोने से उनका स्वागत करें, और मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करता हूं कि भ्राता जी का पुष्प गुच्छ तथा बुक बैच के द्वारा स्वागत करें। भ्राता गिरीश शंकर जी का परिचय यह है कि ये 1982 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऑफिसर हैं, बिहार कैडर के हैं, तथा 2011 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आप दिल्ली में सेवाएं दे रहे हैं, तथा 2012 से आप एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं भ्राता जी को अनुरोध करूं कि आज के इस सत्र में अपना संबोधन और ग्रीटिंग्स दें, मैं थोड़ा सा इसकी जो भ्राता जी ने अभी एड्रेस किया स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर और कैसे तनाव को कम करें, कैसे ग्रीट करें और इसको बीट करें, ये जो बातें सिखाई गई प्रबंधन की उसको व्यवहारिक पहलू थोड़ा सा सर डॉक्टर साहब मैं उसको रियलिटी चेक करना चाहता हूं, एक रियलिटी सिचुएशन देना चाहता हूं। एक बहुत अच्छी कोइंसिडेंस है कि अच्छा आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आपका स्ट्रेस का कारण जो है वो आपका बॉस होता है, लेट मी क्योंकि मैं भी एक कार्य करता हूं कहीं पर, तो हाउ मेनी पीपल बिलीव योर बॉस इज अ कॉज ऑफ योर मेजर स्ट्रेस? नहीं मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं, ओनली वन। एनीवे, तो बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, हम सभी जाते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट करने, लोगों की धारणा होती है कि बॉस से सबसे ज्यादा स्ट्रेस मिलता है, तो ऐसा कोइंसिडेंस है कि भ्राता गिरीश शंकर जी उस विभाग से बिहार में ताल्लुक रखते हैं अर्बन डेवलपमेंट, जिसका मैं एक छोटा सा ऑफिसर हूं, तो हमारा इनका संबंध जो है ऐसे दुनिया के हिसाब से स्ट्रेसर एंड द स्ट्रेस्ड एंड द स्ट्रेस क्योरर ज्यादा समझते हैं लोग कि जैसे कि ऊपर से तनाव मिलता है तो जो कार्य करने वाले मुलाजिम को स्ट्रेस होता है, फिर कहाँ जाते हैं? साइकोथेरापिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास। लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भ्राता डॉक्टर गिरीश पटेल जी ने आपको ऐसे सूत्र दिए हैं कि उन सूत्रों को अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप खुद के स्ट्रेस का प्रबंधन कर पाएंगे। और अगर आपको डॉक्टर गिरीश पटेल जी के जो सूत्रों को इम्प्लीमेंट करना है तो आप सभी जब अपने अपने स्थानों पर जाएंगे तो वहां जरूर आपको ब्रह्मा कुमारीज का सेवा केंद्र मिलेगा और उस सेवा केंद्र में आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट से संबंधित और मेडिटेशन को लर्न करने की जो विधि मिलेगी उस विधि से आप अपने जीवन को बहुत सुंदर बना पाएंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे बीच में भ्राता गिरीश शंकर जी हैं, आज के सत्र में आप अपना शुभ उद्गार जरूर हम सभी के बीच में रखेंगे।
भाई डॉक्टर गिरीश पटेल जी, भाई संजय जी, भाइयों बहनों और हमारी पत्नी भी यहां उपस्थित हैं, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आज प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में शामिल हो पा रहा हूं। मैं इनके आयोजकों को अपनी ओर से पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं आप सबके बीच में आ सका। और यह मेरा थोड़ा सौभाग्य की थोड़ी कमी है कि जो गिरीश पटेल जी की बात पूरी हो रही थी मैं पूरी बात नहीं सुन पाया, कुछ बात सुन पाया। लेकिन आज के जो सत्र का मुख्य विषय है, मीटिंग चैलेंजेस ग्रीटिंग चेंजेस, अर्थात चुनौतियों का सामना और परिवर्तन का स्वागत, ये तो शायद हमारे आज की जीवन शैली में हर रोज हर वक्त हमें इसका सामना करना होता है। हमारे सामने चुनौतियां हो रही हैं और उनका कैसे सामना करें, उन परिवर्तनों को कैसे आत्मसात करें और अपने रास्ते पर बढ़ें। मैं अभी आईटीडीसी के, जैसा मुझे भाई संजय जी ने बताया कि मैं आईटीडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हूं और यद्यपि मैं पहली बार आबू रोड आया हूं लेकिन वहां पर दिल्ली में जो आपका कार्यालय है लोधी रोड में उनके साथ हमारा हमेशा सामंजस्य रहता है और हम लोगों ने यह महसूस किया है कि आपके साथ जो हमारे सत्र होते हैं, आपके साथ जो हमारी जो इंटरेक्शन होता है उसके बाद एक सहजता आ जाती है हमारे स्वभाव में। और हमने आपके पूर्व के कार्यक्रमों में भी अपने यहां से अपने पदाधिकारियों को इसलिए भेजा है क्योंकि हर एक व्यक्ति एक तरह से एक चुनौतियों से एक तरह से स्ट्रेस से घिरा हुआ है और उसे कैसे इससे मुक्ति मिल सके वह इतना आवश्यक है कि बिना उसके कभी हम लोग सफल हो नहीं सकते हैं। हमारी जितनी चुनौतियां हैं उनका सामना हम तभी कर पाएंगे जबकि उन परिवर्तनों को आत्मसात कर और जो स्ट्रेस को जो है उसको हम कम से कम कर सकें, क्योंकि आज की जिंदगी में तो रफ्तार ही जिंदगी बन गई है और वह प्रकृति का एक स्वरूप बन गया है। लेकिन उस रफ्तार में हमें हर रोज हर समय सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने प्रशासनिक जो मेरे 30 साल के अनुभव हैं उसमें कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर गंभीर चुनौतियां आती रही हैं और उनका सामना करने के लिए आवश्यक है कि आप एक मानसिक रूप से तैयार रहें और तभी आप उसको झेल सकेंगे और एक सॉल्यूशन की ओर आप बढ़ पाते हैं। लेकिन उसके बदले में आप सभी माता पिता भी हैं और हम लोग देखते हैं कि अभी जो जनरेशन गैप हो रहा है, अपने बच्चे हैं हमारे, उनके साथ जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। तो वैसे चुनौतियों को सब सामना करने के लिए जब तक उनके बच्चों की तरह से नहीं सोच पाएंगे, उस तरह से नहीं सोच पाते हैं, तो शायद हम लोग उतना सफल रूप में उस समाधान नहीं कर पाते हैं। और जैसा कि अभी भाई गिरीश पटेल जी का मैं सुन रहा था कि आपने जो रास्ता बताया है, कई चीजें ऐसी बताई हैं जिनकी साधना करने से, जिनको आत्मसात करने से, और ये ऐसा नहीं है कि एक कोई ड्रिल की ओर रूप में करें, इसको अपने व्यवहार में लाना होगा, अपने मन में लाना होगा, अपने हमेशा एक तरह से उस तरह से सोचने की शक्ति बढ़ानी होगी, तभी शायद उस प्रकार हम लोग सफल हो पाएंगे। और मैं पुनः आपको, आप सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप जितने प्रतिभागी आज शामिल हैं और मैं भी उनमें, आप में से ही एक हूं आज, तो आप यहां के जो कार्यक्रम होंगे उनसे लाभान्वित होकर हम लोग लौटेंगे और स्ट्रेसलेस लाइफ लीड करेंगे। भाई संजय जी ने एक केवल जिक्र किया कि और आपसे प्रश्न किया कि आपके बॉस से आपको स्ट्रेस मिलता है, स्ट्रेस का कारण बॉस है या नहीं। जहां तक मेरी समझ है, जो मैंने समझा है कि स्ट्रेस का कारण न तो हमारे बॉस हैं, न कोई हमारा सबॉर्डिनेट है, न कोई दूसरा है। स्ट्रेस का कारण अगर है तो हम स्वयं हैं, हमारी सोच जो है वह स्ट्रेस का कारण है। अगर हम लोग जो आपके रास्ते बता रहे हैं और इनके वो व्यवहार में ला सकें तो हम इस स्ट्रेस को अगर कम कर लें, अपने आप को सुधार लें तो सब कुछ सुधर जाएगा। मैं शुभकामना देता हूं आप सभी को कि हम लोग यहां से जब लौटें तो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में लौटें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता गिरिशंकर जी। तो हम सभी ने किस प्रकार से चुनौतियों का सामना किया जाए और परिवर्तन का स्वागत किया जाए, इस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा उनकी राय जाने, उनके विचार जाने। और इस पर मुझे एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, 2 मिनट समय बचा हुआ है। तो ऐसा कवि ने कहा है कि परिवर्तन के बारे में, परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, शर्त यह है कि ये सूरत हाल बदलनी चाहिए, शर्त यह है कि ये सूरत हाल बदलनी चाहिए। इस हिमालय से फिर कोई गंगा पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा पिघलनी चाहिए। और मेरे सीने में सही न सही तो तेरे सीने में हो कोई भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कोई आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव स्पिरिट है। इस स्पिरिट को लेकर के अगर हम अपने आसपास घट रहे तमाम चैलेंजेस को देखें, स्वीकार करें, तो हम बहुत सुंदर जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का इस प्रथम तकनीतिक सत्र का समापन होता है। और एक अनाउंसमेंट है कि आप सभी के बीच में कुछ तेलुगु और कन्नड़ भाषी आए हुए हैं, तो आप सभी में से कोई तेलुगु और कन्नड़ में ट्रांसलेशन के कार्य कर सकते हैं तो आप सभी कृपया स्टेज के पीछे आप अपना नाम नोट करा देंगे ताकि आपके तेलुगु और कन्नड़ भाषी साथियों को सहयोग मिले। और समापन से पूर्व हम सभी 1 मिनट परमात्मा की याद करेंगे और उसके बाद यहां से प्रस्थान करेंगे।
ओम शांति। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी भाई उठे नहीं, हमारे दूसरे वक्ता आदरणीय निर्वैर भाई जी भी हमारे समक्ष पहुंच गए हैं। तो सभी डेलीगेट से निवेदन है सभी बैठे रहें। एक बहुत अच्छा सेशन, पावर ऑफ